एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक बहुत ही दिलचस्प अमेरिकी विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं, विलियम जेम्स। सुना तो होगा ही नाम।
हाँ बिल्कुल, विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक तो कहे ही जाते हैं, पर उनकी बात उससे कहीं आगे जाती है।
हाँ, मतलब सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, दर्शन, है ना?
बिल्कुल, और उनकी सबसे खास बात शायद ये थी कि उन्होंने विचारों की दुनिया में जो दीवारें थी ना, उनको तोड़ने का काम किया।
दीवारें? कैसी दीवारें?
जैसे कि विज्ञान और मानवीय अनुभव, सिद्धांत और रोजमर्रा की जिंदगी, या फिर ये मन और शरीर को जो हम अलग अलग करके देखते हैं। जेम्स ने कहा, नहीं, ये सब जुड़े हुए हैं।
अच्छा।
उनका मानना था कि दर्शन सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, वो जीने का एक तरीका है, एक टूल है जिससे जिंदगी बेहतर हो सकती है। लिए ना एक बड़े बदलाव का दौर था। सिविल वॉर खत्म हुआ था, देश अपनी एक नई पहचान बना रहा था, और विचारों की दुनिया में भी यही चल रहा था, यूरोप की सोच से अलग एक अमेरिकी पहचान बनाने की कोशिश। जेम्स इसी माहौल में थे।
और उसी समय चार्ल्स डार्विन के विकासवाद ने भी तो सब कुछ हिला दिया था, है ना?
हाँ बिल्कुल, डार्विन का असर जेम्स पर बहुत गहरा पड़ा, खासकर ये समझने में कि हमारा मन, हमारी चेतना, ये सब हमें अपने माहौल में ढलने में कैसे मदद करते हैं।
मतलब ये सिर्फ सोचने वाली चीजें नहीं, बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं।
एग्जैक्टली, ये समझना जरूरी है कि जेम्स के लिए ना विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव दोनों की अहमियत थी। बहुत लोग उस वक्त इन्हें अलग मानते थे, जेम्स ने पुल बनाने की कोशिश की।
अच्छा, उनके समय के और कौन विचारक थे?
चार्ल्स सैंडर्स पियर्स थे, जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारवाद की नींव रखने में उनका साथ दिया। फिर जॉन ड्यूई, जो उनके छात्र थे और शिक्षा में जिन्होंने बहुत काम किया।
हाँ, ड्यूई का नाम तो बहुत सुना है।
और जर्मनी के विल्हेम वुंड थे, जिनकी साइकोलॉजी लैब बहुत मशहूर थी। जेम्स ने उनकी लैब मेथड को अपनाया भी और उसकी आलोचना भी की। और हाँ, उनके भाई हेनरी जेम्स, वो तो बहुत बड़े उपन्यासकार बने।
तो विचारों की ये जो उथल पुथल थी, उनके घर से ही शुरू हुई होगी। सुने उनके पिता भी काफी अलग किस्म के विचारक थे।
हाँ, हेनरी जेम्स सीनियर, वो खुद एक जाने माने, थोड़े कह सकते हैं लीक से हटकर सोचने वाले धर्मशास्त्री थे, तो घर में बहसें, सवाल जवाब, ये सब चलता ही रहता था।
और जेम्स की अपनी पढ़ाई भी सीधी साधी नहीं रही।
बिल्कुल नहीं, पहले तो आर्ट की तरफ गए, पेंटर बनना चाहते थे।
अच्छा, पेंटा?
हाँ, फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल गए, लेकिन डॉक्टरी में उतना मन नहीं लगा जितना इस बात में कि भाई साइंस हमें जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में क्या बताती है। फिर 1865 में अमेरिका के जंगलों की एक साइंटिफिक यात्रा पर गए, वहां बीमार पड़े, और कहते हैं कि वहीं उन्हें अस्तित्व के गहरे सवालों ने घेर लिया।
और ये भी सुना है कि वो जवानी में काफी मानसिक तौर पर परेशान रहे थे, कोई आध्यात्मिक संकट जैसी बात।
हाँ, ये सच है, वो एक गहरे डिप्रेशन या कह लीजिए अस्तित्व के संकट से गुजरे। उन्हें लगता था सब कुछ पहले से तय है, हमारी मर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, डिटर्मिनिज्म जिसे कहते हैं।
तो फिर इससे निकले कैसे वो?
उन्होंने एक फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स रेनोवियर को पढ़ा, और फिर उन्होंने एक सचेत फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल में यकीन करेंगे।
यकीन करेंगे, मतलब ये एक चॉइस थी।
हाँ, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा भी, स्वतंत्र इच्छा का मेरा पहला काम स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करना होगा। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी उनके लिए, ये उनके ठीक होने का रास्ता बना और उनके पूरे दर्शन की नींव भी, कि हमारे विश्वास हकीकत को बना सकते हैं।
कमाल है, ये अनुभव उनके दर्शन को कितनी गहराई देता होगा।
बिल्कुल, फिर 1872 में उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे साइकोलॉजी और फिर फिलॉसफी की तरफ मुड़ गए। 1878 में एलिस होवे गिबन से शादी हुई, जिससे उनकी जिंदगी में काफी स्थिरता आई।
चलिए अब उनके कुछ मुख्य कामों पर आते हैं। सबसे पहले 1890 की वो भारी भरकम किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी।
हाँ, वो तो मील का पत्थर है। दो वॉल्यूम में उसने साइकोलॉजी को एक अलग वैज्ञानिक विषय के तौर पर स्थापित करने में बहुत मदद की, और इसी में उन्होंने वो मशहूर आइडिया दिया, चेतना की धारा यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
हाँ, ये बहुत सुना है, चेतना की धारा। इसका मतलब क्या था असल में? क्या ये बस एक कविता जैसा मेटाफर था?
नहीं नहीं, मेटाफर तो था, पर इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक विचार था। जेम्स कह रहे थे कि हमारी चेतना, हमारा मानसिक जीवन, वो कोई रुकी हुई तस्वीरों का एल्बम नहीं है।
तो फिर
वो एक नदी की तरह है, लगातार बहती हुई, बदलती हुई, एक विचार दूसरे में बह जाता है, भावनाएं आती जाती हैं, यादें उभरती हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक सतत प्रवाह है।
जैसे हम सोचते सोचते कहीं और पहुंच जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, या कोई गाना सुनते हुए कोई और ख्याल आ जाता है, ये सब उसी धारा का हिस्सा है। उन्होंने चेतना को टुकड़ों में देखने के बजाय उसकी गतिशीलता पर जोर दिया।
और इसी किताब में वो भावनाओं वाला जेम्स लैंग सिद्धांत भी था, वो तो बड़ा उल्टा सा लगता है।
हाँ वो थोड़ा चौंकाता है। सिद्धांत कहता है कि हम दुखी होकर रोते नहीं, बल्कि
रोने की वजह से दुखी होते हैं।
हाँ, या यूं कहें कि शरीर में जो बदलाव होते हैं, जैसे रोना, कांपना, दिल तेज धड़कना, उन बदलावों का जो एहसास है वही भावना है। शारीरिक प्रतिक्रिया पहले, भावना बाद में।
उदाहरण के लिए
जैसे जेम्स कहते थे कि अगर हम जंगल में भालू देखते हैं तो हम डर के मारे नहीं भागते, बल्कि हम भागते हैं, हमारी सांस तेज होती है, दिल धड़कता है, और इन शारीरिक बदलावों का एहसास ही हमारे लिए डर की भावना है।
ये तो सोचने वाली बात है।
आज भी मानते हैं सर।
इस पर बहस तो आज भी चलती है, लेकिन इसने भावनाओं को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका जरूर दिया, शरीर और मन के कनेक्शन पे जोर दिया।
ठीक है, फिर 1897 में आई द विल टू बिलीव, विश्वास करने की इच्छा।
हाँ, ये निबंधों का एक कलेक्शन था। इसमें जेम्स ने कहा कि कुछ हालात में, खासकर जहां सबूत पक्के ना हो लेकिन फैसला लेना जरूरी हो, जैसे कि नैतिक या धार्मिक मामलों में, वहां विश्वास करना गलत नहीं है, तर्कसंगत हो सकता है।
मतलब बिना सबूत के मान लेना?
नहीं, ऐसे नहीं। उनकी शर्त थी कि चुनाव असली होना चाहिए, मतलब वो हमारे लिए मायने रखता हो, हमें चुनना ही पड़े और फैसला सबूतों पर आधारित ना हो सके। ऐसी स्थिति में अगर कोई विश्वास हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, जीने लायक बनाता है, तो उसे चुनना ठीक है।
जैसे?
जैसे किसी मुश्किल काम को शुरू करने से पहले ये मानना कि हम कर सकते हैं, भले ही गारंटी ना हो।
हाँ बिल्कुल, आपका वो विश्वास ही आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है ना? ये दिखाता है कि हमारी सोच कैसे हकीकत पर असर डाल सकती है। ये आंखें बंद करके मारना नहीं है, बल्कि जिंदगी की अनिश्चितताओं के बीच जीने का एक तरीका है।
समझ रहा हूँ, ये उनके प्रैग्मेटिज्म से जुड़ता है फिर।
बिल्कुल, और फिर 1902 में आई उनकी एक और जबरदस्त किताब द वराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस,
धार्मिक अनुभव के किस्में। इसमें क्या था?
ये उनके स्कॉटलैंड में दिए लेक्चर्स पर आधारित थी, और इसमें इन्होंने ना किसी धर्म के संगठन या उसकी किताबों पर फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया लोगों के व्यक्तिगत, निजी, धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभवों पर।
अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस पर।
हाँ, उन्होंने दिखाया कि धर्म का मतलब अलग अलग लोगों के लिए कितना अलग हो सकता है, और इन अनुभवों का, चाहे वो कितने भी अजीब या रहस्यमयी लगें, हमें सम्मान करना चाहिए। उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया, ये धार्मिक अध्ययन के लिए एक नया रास्ता खोलने जैसा था।
कर दिया।
सही, यहीं पर जेम्स ने अपना सबसे जाना माना विचार खुलकर सामने रखा कि किसी आइडिया का सच क्या है, इसका पता कैसे चलेगा।
कैसे?
जेम्स ने कहा, देखो कि वो विचार व्यवहार में कितना काम आता है। उन्होंने पूछा, विचारों का नकद मूल्य यानी कैश वैल्यू क्या है? क्या वो हमें दुनिया को बेहतर समझने और उसमें जीने में मदद करते हैं?
तो अगर कोई विचार काम आता है तो वो सच है?
हाँ, व्यवहारिक अर्थ में। जेम्स के लिए सच कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कहीं ऊपर आसमान में तय हो। सच वो है जिसे हम अपने अनुभवों से परखते हैं, जो हमारी जिंदगी में कारगर साबित होता है।
तो ये सच बदल भी सकता है जैसे जैसे हमारे अनुभव बदले?
बिल्कुल, सत्य एक बनने वाली चीज है, एक प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही डायनामिक और डेमोक्रेटिक विचार था, और इसी से जुड़ा उनका एक और कॉन्सेप्ट है, रैडिकल एम्पिरिसिज्म।
रैडिकल एम्पिरिज्म, ये क्या है? सुनने में भारी लगता है।
हार्वर्ड गहरा है। देखिए, आमतौर पर एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद मानता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। जेम्स इससे सहमत थे, लेकिन वो एक कदम आगे गए।
कहाँ?
उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव सिर्फ अलग अलग चीजों का नहीं होता, जैसे ये मेज है, वो कुर्सी है। हमारा अनुभव उनके बीच के रिश्तों और जुड़ावों का भी होता है।
रिश्तों का? जैसे?
जैसे और, अगर, लेकिन, क्योंकि, साथ, ये जो जुड़ाव है ना, जेम्स ने कहा, ये भी उतने ही वास्तविक हैं जितनी कि वो चीजें। ये हमारे अनुभव का हिस्सा है।
अच्छा,
तो वास्तविकता सिर्फ बिखरी हुई चीजें नहीं है, बल्कि एक पूरा जुड़ा हुआ, बहता हुआ अनुभव है। चीजें और उनके संबंध दोनों, और अनुभव ही वास्तविकता का पूरा आधार है। इसीलिए रैडिकल एम्पिरिसिज्म।
समझ गया, मतलब अनुभव में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं, उनके कनेक्शंस भी रियल है, और इसी सोच से फिर वो बहुलवाद यानी प्लुरलिज्म की बात करते थे।
हाँ, क्योंकि अगर अनुभव इतना रिच और डायनामिक है, अगर रिश्ते भी उतने ही रियल हैं, तो दुनिया को किसी एक ग्रैंड थ्योरी या एक अकेले नजरिए से नहीं समझा जा सकता।
मतलब कोई एक अंतिम सत्य
नहीं, हम जेम्स के हिसाब से नहीं। वास्तविकता बहुआयामी है, इसमें कई सच कई दृष्टिकोण एक साथ रह सकते हैं। दुनिया एक खुली हुई किताब की तरह है जिसका आखिरी पन्ना भी लिखा जाना बाकी है। इट्स प्लुरलिस्टिक।
तो इन सारे विचारों का असर किन किन फील्ड्स पर पड़ा? साइकोलॉजी पर तो जाहिर है।
हाँ, मनोविज्ञान में तो उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का पिता कहते ही हैं। उन्होंने फंक्शनलिज्म की नींव रखी कि दिमाग क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये जानना जरूरी है। आदतें, भावनाएं, चेतना, ये सब हमें जिंदा रहने में कैसे मदद करते हैं।
और दर्शन में
प्रैग्मेटिज्म, ये अमेरिका का शायद सबसे ओरिजिनल फिलोसफिकल योगदान माना जाता है। धार्मिक अध्ययन में उनकी किताब वराइटीज आज भी क्लासिक है, और शिक्षा पर भी उनके स्टूडेंट जॉन ड्यूई के जरिए बहुत गहरा असर पड़ा।
और आज के समय में क्या जेम्स आज भी रिलेवेंट है?
ओ, बहुत ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगी कि शायद आज पहले से भी ज्यादा। बीच में कुछ समय उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उनके विचारों में फिर से जबरदस्त दिलचस्पी पैदा हुई है।
किस तरह से?
देखिए, चेतना पर उनकी जो बातें हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली, वो आज भी कॉग्निटिव साइंस और न्यूरो साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन कैसे काम करता है इसे समझने में मदद करती हैं।
और जिंदगी जीने के तरीके के बारे में?
हाँ, वहाँ भी विश्वास, उम्मीद और हमारे नजरिए की भूमिका पर जो उन्होंने कहा, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी और कई तरह की थेरेपीज में बहुत काम आता है।
अच्छा।
और शायद सबसे जरूरी बात आज के लिए, आज दुनिया कितनी बटी हुई है ना, अलग अलग विश्वास, अलग अलग कल्चर। जेम्स का जो खुलापन था, उनका बहुलवाद कि अलग अलग नजरियों का सम्मान होना चाहिए, वो आज बहुत जरूरी है। विज्ञान और धर्म के बीच बातचीत की जो उन्होंने कोशिश की, वो आज भी प्रासंगिक है।
उनके कुछ कोट्स तो वाकई बहुत फेमस हैं और उनके विचारों का निचोड़ लगते हैं। जैसे एक है, हमारे लिए किसी सत्य का अर्थ क्या है, इसकी अंतिम कसौटी वो आचरण है जिसे वो निर्देशित या प्रेरित करता है।
हाँ, ये प्रैग्मेटिज्म का सार है। आइडियाज का असली टेस्ट उनके एक्शन में है।
और एक ये मुझे बड़ा पसंद है, बुद्धिमान होने की कला ये जानना है कि क्या नजरअंदाज करना है।
हाँ, आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में तो ये कितना सच है। फोकस करना, जरूरी चीजों पर ध्यान देना।
बिल्कुल। और ये वाला, जीवन से डरो मत, विश्वास करो कि जीवन जीने लायक है और तुम्हारा विश्वास इस तथ्य को बनाने में मदद करेगा।
ये विल टू बिलीव की जान है, होप और पॉजिटिव सोच की ताकत, कैसे हमारा नजरिया हकीकत को शक्ल दे सकता है।
चेतना पर वो नदी वाला रूपक,
चेतना टुकड़ों में कटी हुई प्रतीत नहीं होती, ये बहती है। एक नदी या धारा वे रूपक हैं जिनके द्वारा इसका सबसे स्वाभाविक रूप से वर्णन किया जाता है।
हमारे अंदरूनी संसार की तरलता और निरंतरता को कितनी खूबसूरती से पकड़ा है। और आखिर में ये वाला, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि मनुष्य अपनी दृष्टिकोण को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है।
ये ऑप्टिमिज्म, ये इंसानी ताकत में विश्वास, ये जेम्स की पहचान है।
जाहिर है, इतने नए और कह सकते हैं रेडिकल विचारों की आलोचना भी तो हुई होगी, खासकर वो प्रैग्मेटिज्म वाले सच के सिद्धांत की।
हाँ, बिल्कुल हुई, और काफी तीखी हुई। बर्टन रसल जैसे बड़े दार्शनिकों ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर जो काम करता है वही सच है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई झूठी बात हमें अच्छा महसूस कराती है तो वो सच हो गई।
हाँ, ये तो गड़बड़ लगती है।
जेम्स का जवाब था कि काम करने का मतलब सिर्फ फौरी तौर पर अच्छा लगना नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो विचार लंबे समय में हमारे बाकी अनुभवों, बाकी विश्वासों के साथ फिट बैठता है या नहीं, वो हमारे पूरे अनुभव के सिस्टम में कोहेरेंट है या नहीं।
अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
हाँ, और विल टू बिलीव पर भी सवाल उठे। लोगों ने कहा कि ये तो बिना सबूत के कुछ भी मान लेने को, जिसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग, उसको बढ़ावा देता है। जेम्स का तर्क वही था कि जिंदगी में कई बार हमें अधूरे सबूतों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में विश्वास एक जरूरी गाइड बन सकता है। ये अंधा विश्वास नहीं है, बल्कि अनिश्चितता में जीने का एक तरीका है।
कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं जेम्स के बारे में, जैसे उन्होंने फॉर्मली कभी फिलॉसफी पढ़ी ही नहीं।
हाँ, ये कमाल की बात है। वो मेडिसिन और साइकोलॉजी से होते हुए फिलॉसफी तक पहुंचे, और ये भी कि वो जमाने में काफी अच्छे पेंटर थे।
और उनके भाई हेनरी जेम्स इतने बड़े नॉवेलिस्ट। दोनों भाइयों की चिट्ठी पत्री भी तो बहुत मशहूर है।
हाँ, वो उस जमाने के बौद्धिक जीवन की एक बेहतरीन झलक देती है। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने हार्वर्ड में 1875 में एक साइकोलॉजी लैब खोली थी, जो जर्मनी की वुंड लैब से भी पहले की मानी जाती है। हालांकि वो शायद डेमोंस्ट्रेशन के लिए ज्यादा थी।
और वो चेतना की अलग अलग अवस्थाओं को समझने के लिए खुद पर प्रयोग भी करते थे।
बिल्कुल।
नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह।
हाँ, उन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस लेकर अपने अनुभव लिखे थे।
हाँ।
उनका मानना था कि हमारी जो ये रोजमर्रा की नॉर्मल चेतना है वो चेतना के कई संभावित रूपों में से सिर्फ एक है।
क्या बात है, वाकई बहुत अलग किस्म के विचारक थे।
बिल्कुल।
तो संक्षेप में कहें, विलियम जेम्स अमेरिकी सोच के एक ऐसे स्तंभ है जिन्होंने मनोविज्ञान और दर्शन दोनों को एक नई दिशा दी।
हाँ, उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता, सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। उनका प्रैग्मैटिज्म, उनका व्यवहारवाद, अमेरिका का एक मौलिक दार्शनिक नजरिया है जो डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म और विचारों के व्यवहारिक मोल पर जोर देता है।
और उनकी शायद सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने दिखाया कि आप गंभीर बौद्धिक काम करते हुए भी जिंदगी के गहरे सवालों, अर्थ, उद्देश्य, विश्वास से भाग नहीं सकते।
बिल्कुल। जेम्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे विचार सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, वो औजार हैं जिनसे हम अपनी दुनिया और खुद को बनाते हैं।
तो आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जेम्स ने कहा था कि विश्वास हकीकत को बनाने में मदद कर सकता है। आज के इस दौर में जहां इतनी सारी जानकारी है, सच क्या है इस पर ही इतने सवाल हैं, ऐसे में हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक विश्वास हमारी दुनिया को कैसे बना रहे हैं, और क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल ज्यादा जिम्मेदारी से, ज्यादा समझदारी से कर सकते हैं, सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।